579 from Highway 401 in Napanee, Ahuji. Koi appointment nahi, drive through facility. Exit 579 from Highway 401 in Napanee. Quick Track Lube, the one stop shop. 519-622-0660 ja quicktracklube.com. QTL, because we care. Quick Track Lube.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. ہم ہر سنڈے کو شام 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہم ای آواز ریڈیو 770 AM پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہر سنڈے کو شام 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان. اگر آپ ہماری گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں 416-620-1778 پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری eawaz.com پہ جا کے اس پروگرام کو ویب سائٹ پہ سن سکتے ہیں. آپ آرکائیو میں پچھلے پروگرام بھی سن سکتے ہیں. آپ فیس بک جو ہے ای آواز کا وہاں پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے اسمارٹ فون پر ای آواز کا ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو دعا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کب تب مانگی تھی, پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام نے, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی, یعنی وہ تھوڑا سا توتلا بولتے تھے اور لکنت کے ساتھ وہ گفتگو کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی زبان کی گرہیں کھول دیں اور ان کا سینہ یعنی کہ ان کا چیسٹ کشادہ کر دیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سینے میں وہ علم, وہ نالج, وہ سمجھ جو ہے وہ بھر دے جو جس کی ایک پروفٹ کو ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ زمانے میں جب دنیا میں کے سامنے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لے کر جائیں تو ان کے لیے جو خزانہ ہے علم کا وہ کھل چکا ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی. تو یہ دعا ہم ہر بیان سے پہلے, ہر اسپیچ سے پہلے, کسی بھی میٹنگ سے پہلے اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کھولنے میں بھی اسی طرح مدد فرماتا ہے, اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے رہنمائی مانگی تو ان کو عطا کی گئی. تو یہ جو دعا ہے آپ اس کو پڑھیے اور اس کو یاد کیجئے. اور آپ کا کوئی بھی پریزنٹیشن ہو, کوئی کلاس پرفارمنس ہو, کوئی اسپوکن ورڈ آپ کا پریزنٹیشن ہو, آپ کی کوئی میٹنگ ہو, یا اگر آپ کسی پوڈیم پہ کھڑے ہو کے اسپیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو برکت عطا فرمائیں گے. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں علم پہ, اور خاص طور پہ وہ علم جو ہم اپنے بچوں کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں. علم کیا ہے؟ علم ہم جو اپنے بچوں کے لیے پیش کرتے ہیں وہ معلومات کا وہ خزانہ ہے جو ان کو اسکول کی کتابوں سے بھی ملتا ہے, اس کے ساتھ ان کو قرآن سے ملتا ہے, اس کے ساتھ ان کو اپنے گھر سے ملتا ہے اور سوسائٹی سے بھی ملتا ہے. ابھی بہت جلدی ہم اسکولز کو بند ہوتا ہوا دیکھیں گے. جون کے آخر میں, ہم جون کے مہینے میں ہیں, اور جون کے آخر میں اسکول سارے بند ہو جائیں گے اور پھر جولائی اور اگست کا مہینہ جو ہے جو بچے ہیں وہ چھٹیوں پر ہوں گے. تو اب کون سا علم جو ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے, ان کو ان ہیروز کو بننے میں مدد کی جائے کہ جو سوسائٹی میں ایک بہترین جو ہے وہ کردار اور عمل کا آپ کو پیش کر سکیں. اور وہ بھلا کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو خالی کتابوں سے نہیں ملتا, وہ علم ہے جو پرسنل ایکسپیرینسز سے, ایکٹیویٹیز سے, کسی جگہ انوالومنٹ سے, کسی کورس میں انرولمنٹ سے ملتا ہے بچوں کو. تو خالی اگر ہم اپنے بچوں کو آج کے ہیروز بنانا چاہتے ہیں تو ہم خالی کتابوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, ہم خالی اسکولس کے اوپر رلائی نہیں کر سکتے, بلکہ ہم ایک مجموعہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ساتھیوں کہ ہم سمر میں جب داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں ہماری کمیونٹی, مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں, اسلامک آرگنائزیشن, اسلامک اسکولز, کمیونٹی آرگنائزیشنز, بہت زیادہ بڑی تعداد میں سمر کیمپس جو ہیں وہ آفر کرتی. और वो समर कैंप्स का मकसद क्या होता है कि जो दो महीने बच्चों को स्कूल से अलहदगी इख्तियार करने को मिलती है, जिसमें अपने बच्चे वालदैन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली में वेकेशन पे जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ टाउन वेकेशन पे नहीं जा रहे होते, या उनके वालदैन के पास इस्तेदात नहीं होती, या उनके वालदैन के पास छुट्टी नहीं होती, या उनके वालदैन के पास इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं होती कि वो अपने बच्चों को आउट ऑफ टाइम लंबे अरसे के लिए, जो दो महीने का अरसा है, लंबे अरसे के लिए उनको कहीं छुट्टियों पर ले जा सकें। तो ऐसे बच्चों को एंगेज करने के लिए ये समर कैंप जो है वो ऑफर किए जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में ये समर कैंप जो है बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किए जाते हैं, और उनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी लिस्ट होती है एक्टिविटीज की जो बच्चे जो है उसको इख्तियार कर सकते हैं। वह खासतौर पर जो हमारे स्कूल एज के, एलिमेंट्री स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं, उनको ये इल्म और एक्टिविटी, फन और लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इन इन कैंप्स में। तो इन कैंप्स में जो टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी जो है मेंटोर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका पूरा जो महवर होता है, जो फोकस होता है, वो होता है इन बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, खेल ही खेल में, फन के साथ, जिस तरह स्कूल करते हैं, कन्वेंशनल स्कूल्स जो होते हैं, जो करते हैं कि खेल ही खेल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज के साथ, थीम बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट्स के साथ बच्चों को एक बहुत ही खूबसूरत किरदार को, किरदार में तश्कील दिया जा सके। और जो वालदैन घर पे काम कर रहे हैं अपने बच्चों पे, या काम नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाए उनकी एफर्ट्स को, या अगर एफर्ट्स कहीं मिसिंग है तो उनके समर की इन दो महीनों की छुट्टियों में उनको जो है वो हेल्प की जाए। कुछ कैंप दो हफ्ते के होते हैं, कुछ कैंप तीन हफ्ते के, चार हफ्ते के, कुछ और लंबे कैंप होते हैं, लेकिन यूजुअली तीन से चार हफ्तों के कैंप होते हैं। कुछ कैंप तीन दिन के लिए अवेलेबल हैं, कुछ चार और कुछ पांच, यानी कि पूरे पांच दिन जो होते हैं, जो स्कूल डेज होते हैं, उसके लिए अवेलेबल होते हैं। और जो ये पांच डेज के कैंप होते हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए स्पेशली मदद के तौर पर जो है मुरतब किए जाते हैं, कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और वो अपने बच्चों को जो गर्मियों की छुट्टियां हैं जिसमें उन्होंने वर्क करना है, क्योंकि वालदैन की तो समर की दो महीने की छुट्टियां नहीं होती क्योंकि नहीं है, तो अक्सर वो जो पेरेंट्स हैं वो उनको समझ नहीं आता कि जब गर्मियों की छुट्टियां और उनका बच्चा घर पे है और वो क्या करें, तो उनको वो कैंप्स जो है वो एक तरह से जो है एक्टिविटी सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं उस सूरत में जब स्कूल्स क्लोज होते हैं। तो ये तो हम कैंप्स की बात करें। अब क्या है कि कैंप की क्वालिटी जो है, जो इल्म प्रोवाइड होता है या जो एक्टिविटीज प्रोवाइड होती हैं, वो आपको बहुत सोच समझ के पिक करनी होती है। क्या ये कैंप ऐसा है जहां मेरे बच्चा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एंगेज होगा? क्या ये कैंप ऐसा है जिसमें वो एक्टिविटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जिस लाइनअप की मुझे ख्वाहिश है? क्या ये वो एक्टिविटी ऐसी प्रोवाइड की जा रही है जिससे मेरे बच्चों का कोई स्किल डेवलप होगा पूरे समर में? या वो कैंप, क्या वो कैंप ऐसा है कि वो मेरे बच्चों को फन एंड लर्निंग एनवायरमेंट के साथ एक वैल्यू बेस्ड एनवायरमेंट भी देता है? तो ये सब सवालात हैं जो आपको अपने आप से करने चाहिए। इल्म बच्चे को देते वक्त, उस इल्म को जिस माहौल में पेश किया जा रहा है, वो इल्म जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, जिन लोगों के थ्रू पेश किया जा रहा है, जिन लोगों के साथ पेश किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आपको मद्देनजर रखनी होती हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जब भी आप अपने बच्चे को किसी समर कैंप में इनरोल करते हैं, तो आपने ये सब चीज, आपने सिर्फ बच्चे से पीछा नहीं छुड़ाना कि बच्चे को बेबी सिटिंग की तरह या डे केयर की तरह कहीं भी आपने छोड़ दिया। आपने असेसमेंट करनी है, एनालाइज करना है कि जो मेंटोर्स हैं वो कैसे हैं, कोचेज हैं वो कैसे हैं, टीचर्स हैं वो कैसे हैं, और क्या किसी अच्छी एक टीम की तरफ से ये कैंप पेश किया जा रहा है, और क्या उस कैंप में पढ़ाया जाएगा, क्या फन अनलर्निंग एनवायरमेंट होगी, क्या वो फन सिर्फ खेल कूद और गलत चीजों पर फोकस तो नहीं होगा कि पता चला बच्चों को दो घंटे के लिए मूवी लगा के बिठा दिया और बच्चे का टाइम स्क्रीन के सामने फिर हो गया। क्या अगर इवन स्क्रीन भी यूज किया जा रहा है तो क्या मीनिंगफुल एक्टिविटीज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, और क्या जो वैल्यूज या जो दीन मेरे घर में फॉलो हो रहा है वही वैल्यूज और वही दीन मेरे बच्चे को उन कैंप्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये सब चीजें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, और मैं चाहूंगी कि आप कोई भी कैंप का इंतखाब करते वक्त आप उन चीजों को मद्देनजर रखें और ये देखें कि आप उस कैंप को इनरोल करने से पहले उनसे सवालात कर लीजिए, उनको ईमेल कर दीजिए, उनको फोन कर लीजिए, उनके फेसबुक पेज अगर है उन पे जाके देख लीजिए कि उनकी पिछली हिस्ट्री क्या है, या अगर वो कोई एक नई टीम आ रही है तो उस टीम में पैशन क्या है, उस टीम में एक्सपर्टीज क्या है, क्या वो जो है खुद भी गए या इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो हैं या पढ़े लिखे क्वालिफाइड मेंटर्स जो हैं वो इस कैंप को प्रोवाइड करें, क्या अगर है जो इस्लामिक वैल्यूज सिखाई जा रही है या इस्लामी तालीम जो दी जा रही है वो तालीम जो है वो एक रेप्यूटेड सोर्स से दी जा रही है या सिर्फ कहीं से थोड़ी सी किताबें जमा करके आपके बच्चे को सिखाया जा रहा है। बहुत से कैंप बहुत छोटे पैमाने पे जो है एजुकेशन या इल्म का एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं, बहुत जो है कैंप्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर, उनका पूरा फोकस ही सिर्फ जो है इस्लामिक वैल्यू सेट लर्निंग पर होता है। तो अगर आपको पिक एंड चूज करना हो तो मेरी आपसे ही गुजारिश होगी कि पूरा साल आपका बच्चा सेक्युलर पब्लिक स्कूल में जाके सेक्युलर वैल्यू सीखता है और आपका बच्चा कैनेडियन मार्केट की एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें आपके दीन की वैल्यूज कम से कम होती हैं। स्कूल में तो कुछ नहीं मिल रहा ना आपके बच्चे को आपके दीन का, स्कूल में तो कुछ नहीं मिल रहा ना जो आपकी वैल्यूज से बिल्कुल कंप्लीटली अलाइन करता हो या रेजोनेट करता हो, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि इन दो महीनों में अगर मेरे बच्चे को कहीं भी कोई मौका मिल रहा है, कहीं भी कोई लर्निंग एनवायरमेंट मिल रही है, तो मेरी वैल्यू बेस्ड स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना चाहिए। आपका पर्सनल स्टैंडर्ड नहीं, आपके दीन का स्टैंडर्ड, आपकी कल्चरल, आपकी इस्लामिक, आपकी स्पिरिचुअल, जो रूहानी आपकी वैल्यूज होती हैं उस पर वो पूरा उतरना चाहिए। आप देखें कि उस पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कहीं गलत अकायद तो आपके बच्चे को नहीं सिखा रहे, क्या वो टीचर्स जो है वो बिल्कुल लिबरल वैल्यूज तो आपके बच्चों को नहीं देंगे कि एवरीथिंग इज ओके, सब चीज जायज है, सब चीज सही है, सब चीज चलती है, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं। तो आपने ये देखना है, असेस करना है कि आपको सही लोग उस कैंप में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा जो है छोटी उम्र में कंप्यूटर की तरह है, आप जो चीज भी उसमें फीड करेंगे वो कंप्यूटर उसी तरह की डिस्क फिल करके और उसी का प्रोग्राम आपको पेश करेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह हाँ उर्दू का एक जुमला है कि बच्चा जो है वो गीली मिट्टी की तरह है, जब आपको उसको गूंधते हैं तो जिस तरह आप उसे गूंधते हैं उसी तरह मुरतब होकर शक्ल सामने आती है। तो आजकल मैं देखती हूँ बहुत वालदैन परेशान हैं कि मेरे बच्चे सेक्युलर वैल्यूज देके बड़े हो रहे हैं या बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो रहे हैं या बिल्कुल उस वैल्यू सेट को फॉलो नहीं कर रहे जो आपका दीन आपको सिखाता है। उसकी वजह ही है कि ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में जो सेक्युलर लिबरल व्यूज के साथ हमारे जो कन्वेंशनल पब्लिक स्कूल हैं वो उसको यही वैल्यूज दे रहे हैं और आपका बच्चा 7 से 8 घंटे वहीं पर पढ़ा, वही सारी आइडियोलॉजी लेके बड़ा हो रहा है, वही सारी आइडियोलॉजी उसकी पर्सनालिटी डेवलप करी, क्योंकि आप तो वहां पे हैं ही नहीं, आप तो अपने घर में हैं या अपनी जॉब पे हैं। तो आपके बच्चों के साथ जो टीचर वो टाइम गुजार रही है उसी की वैल्यू सेट लेके, अगर वो टीचर आपकी वैल्यू से अलाइंड है तो आपके बच्चों को वही देगी, अगर नहीं है तो वो वही देगी, उसमें टीचर की गलती नहीं है, ठीक है। और आपके पास गलती इसलिए नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अनलेस आप स्टेट होम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को होम स्कूल कर सकते हैं, आप उसको अपने घर में एक फर्स्ट एजुकेटर के तौर पे सही तालीम दे सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट मैसेजिंग के साथ, कंसिस्टेंट पूरी कंप्लीट बॉन्डिंग के साथ दे सकते हैं, नहीं वरना आप याद रखिए कि ये पब्लिक स्कूल जो है आपके बच्चों को वही वैल्यू सेट देंगे जो वहां पे मिल रहा है, उसका आपके ऊपर आपके पास बहुत कम इख्तियार होता है, ठीक है। तो इस 2 महीने की छुट्टियों में ये जो इल्म आप अपने बच्चे को देंगे एक दूसरी प्राइवेट सेटिंग से, ठीक है, तो उस प्राइवेट सेटिंग में लोग उसको किस तरह मोल्ड कर रहे हैं कि वो सितंबर में जब स्कूल जाएगा तो आपकी वैल्यू उसके साथ पूरी तरह आरास्ता होके जाएगा, ताकि वहां जो गलत अगर कोई चीज मिल रही है जो आपकी वैल्यू से अलाइन नहीं करती, कोलाइट करती है, तो उसको अपने जहन से समझने की, सोचने की या मुरतब करने की उसके पास सलाहियत हो जाएगी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैंप्स को इख्तियार करने से पहले, अपने बच्चे को एनरोल करने से पहले, आप ये देखें कि क्या वैल्यू सेट उस कैंप में प्रोवाइड किया जा रहा है और क्या वैल्यू सेट आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को एक प्रोडक्टिव, कंप्लीटली वैल्यू बेस्ड, ऑनेस्ट और कंट्रीब्यूटिंग मुस्लिम फॉर द सोसाइटी बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को सिर्फ एक करियर फोकस्ड ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को वे करें और आप ये देखें कि आपकी बच्चे की नीड्स क्या है और आप अपने बच्चों की नीड्स को किस तरह फुलफिल करना चाहते हैं, उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ठीक है, हर किस्म की नीड्स आपका वो कैंप अगर फिल कर रहा है तो एक बहुत अच्छी चॉइस है। हम एक ब्रेक सुनते हैं, ब्रेक में एक मैसेज सुनते हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत कैंप के बारे में है, जो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो रेप्यूटेड सोर्स के साथ उनको पेश कर रही है, तो लेडर फाउंडेशन और उनका ब्रांडेड सीरीज ऑफ कैंप है यंग हीरोज के नाम से। हम सुनते हैं कि वो पहली दफा अपना स्टेम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ पिछले विंटर कैंप, मार्च ब्रेक कैंप और अब फिर समर कैंप में उन्होंने कितनी खूबसूरत वैल्यूज जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की हैं, रेप्यूटेड टीचर्स के साथ, प्रॉपर इस्लामिक वैल्यूज के साथ। आइए यंग हीरोज का एक मैसेज सुनते हैं, हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।
Right. right here in Mississauga. Just imagine your kids doing experiments at the age of 12, 13, 14, 15, and 16 that they would do at when they get to the university level and the scientific level. You position them to be able to take on the world and be the best in their scientific fields.
In the robotics course, your children would be learning to build and create robots, automation tools and toys, computer vision and artificial intelligence.
Every child wants to be a superhero, but how many would ever consider mathematics as a superpower? Here at Young Heroes, we teach mathematics like a superpower, a skill needed for the future world today. With math, kids can be young heroes.
With leading programs in Python, data analytics, Young Heroes serves as a platform to launch your children's career in data analytics, engineering, and software.
The future of your kids is just one click away. So click the button below and turn your kids into leaders of tomorrow.
Assalamu alaikum, welcome back. السلام علیکم ویلکم بیک ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم ٹاک پہ فرینہ صدیقی کے ساتھ ڈبلیو 770 AM eawaz.com پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں آپ ہمارے ریڈیو چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اپنے کار کے ریڈیو کے ہر جگہ فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں ای آواز کی فیس بک پہ جا سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کا حصہ بننے کے لیے 416-620-1778 پر 416-620-1778 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے سمر کیمپس کی اور اس علم کی جو ہمیں ان دو مہینوں میں ہمارے بچوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے آپ ہمیں اپنے اسمارٹ فون پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ای آواز کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں تو ہماری گفتگو کا حصہ بنیے گا ہمیں بالکل اچھا لگے گا آپ کے ساتھ بات کرنا اور آپ کی رائے کو سننا تو ابھی ہم نے ینگ ہیروز کے اسٹیم پروگرام کے بارے میں سنا تو اسٹیم پروگرام جو ہے ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو سائنس ٹیکنالوجی میں بچوں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے بہت چھوٹی ایج سے ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں بچوں کی مہارت ان کی آئندہ زندگی کے بھی بہت کام آتی ہے ان کو ایک کمپیٹیٹو ایج کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلم پوری دنیا میں سب سے پہلے اپنی مہارت کو منوایا بہت بڑی بڑی جو چیزیں آج ہمیں سنائی جاتی ہیں الجبرا ہے دوسری چیزیں ہیں میتھمیٹکس ہے اس کے بانی ہی اس اور آج مسلمان قوم ہمیں پیچھے نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف ڈالنا چھوڑ دیا ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی میں میتھمیٹکس میں میڈیا میں نہیں ڈالتے تو سوچئے ان چیزوں پہ کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو اس مہارت میں دوبارہ ڈال کے اس خوبصورت ہسٹری کو دوبارہ الائیو کر سکتے ہیں اور یہی میسج اور یہی پیغام ہے ٹولیڈو فاؤنڈیشن کا وہ اپنے علم سے اپنے کیمپ سے اپنے پروگرام اسٹرکچرڈ پروگرامس کے ذریعے ٹولیڈو فاؤنڈیشن ینگ ہیروز کے تھرو آج کے مسلمان بچے کو ایک ٹیکنالوجیکل ایج دینا چاہتے ہیں ایک ویلیو بیس سیٹنگ دینا چاہتے ہیں اور ایک ویلیو بیس اسٹرکچر دینا چاہتے ہیں اور بہت جلد ہی ٹولیڈو فاؤنڈیشن انشاءاللہ اپنا اسکول جو ہے وہ شروع کرنے جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں ضرور اس اسکول کے بارے میں ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے اور آپ سے ضرور رابطہ رہے گا آپ کے اور ٹولیڈو فاؤنڈیشن کے دوران اگر آپ ٹولیڈو فاؤنڈیشن کو انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو office@toledo.foundation پہ لکھ سکتے ہیں office@toledo.foundation اسلامک اسکول کے بارے میں جو کہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں ان کے اپ کمنگ سمر کیمپ کے بارے میں جو کہ بہت جلدی ہی انرولمنٹ اسٹارٹ کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ٹین پروگرام میں جس کے بارے میں آپ نے بھی ایک بہت خوبصورت میسج سنا اور آپ اگر مجھے لکھنا چاہیں جو میں آپ کو کنیکٹ کرا سکوں ٹولیڈو فاؤنڈیشن سے تو آپ مجھے بھی میسج کر سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیو کے نیچے فیس بک کے تھرو یا آپ ہمارے ای آواز کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ہمارے ان پروگرامز کی بات اب ہم بات کرتے ہیں ہم نے ابھی اپنے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جب کیمپس چوز کرتے ہیں تو کیا کیمپس چوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ کیمپ چوز کرتے ہیں اور وہ کیمپ کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے کور ہو جاتا ہے ٹائم تو اس کے بعد ہم کیا کریں اپنے بچوں کے لیے اب وہ جو گھر پہ ہیں وہ بوریت کا شکار ہیں آپ کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ ان کے کہیں بھیج بھی نہیں سکتے پھر کیا کریں आप अपने बच्चों को स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आपकी जॉब, आपका करियर आपको इजाजत देता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बच्चों को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, तो उस टाइम को निकालिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका बच्चा है, क्योंकि आपका बच्चा आपकी प्रोडक्ट है, आपका बच्चा आपके जमाने में आपकी पहचान है। अगर आप अपने अपनी प्रोडक्ट को तश्कील देने में मदद नहीं की, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को तश्कील देने में बेहतरीन महारत का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट आपकी दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके लिए मुश्किल की वजह बन जाएगी। क्योंकि आज के दौर में वालदैन को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपके मरने के बाद जो है वो आपके लिए सदका जारिया होना चाहिए, वो इस दुनिया में एक बहुत ही प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन होना चाहिए किसी भी मुल्क का, ठीक है, ताकि आपके जाने के बाद भी वो फलाही कामों में भी हिस्सा ले रहा हो, अपनी तालीम से महारत जो इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट कर रहा हो, और उसके साथ कोई ना कोई दुनिया में ऐसा काम कर रहा हो जिससे दुनिया के दूसरे लोगों को फायदा हासिल करने में मदद मिले। आपका बच्चा एक बेहतरीन वॉलंटियर होना चाहिए, आपका बच्चा एक बेहतरीन प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका बच्चा एक बेहतरीन नेबर होना चाहिए, आपका बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रीब्यूटिंग सिविकली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए। और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप उसको वो आदाब सिखाते हैं, और जो वो ज्यादातर वालदैन सिखा सकते हैं, माँ बाप सिखा सकते हैं, आपने किस तरह नेबर के साथ डील करना है, आपने किस तरह कलीग के साथ डील करना है, आपने किस तरह अपने रिलेटिव के साथ डील करना है, आपने किस तरह अपने क्लासमेट्स के साथ डील करना है, आपने किस तरह अपने कोवर्कर की रिस्पेक्ट करनी है, उतनी रिस्पेक्ट करनी है जितने अपने मैनेजर्स की करते हैं। और अब आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या आपके जो लोअर स्टाफ है, आपके नीचे जो आपके अंडर काम कर रहा है, उसकी भी आपने उसी तरह रिस्पेक्ट करनी है जिस तरह आप अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारे आदाब जो हैं ये घर से शुरू होते हैं। आप किस तरह, अगर आपके घर में कोई काम करने वाला आ रहा है या आ रही है, कोई सर्विस मैन आ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आ रही हैं, कुछ घरों में क्लीनिंग लेडीज होती हैं, उन पर आप किस तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका बच्चा सब देख रहा होता है। तो ये वैल्यू सेट वो आपसे लेके बड़ा हो रहा है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो तालीम, जो फर्स्ट एजुकेशन माँ की गोद से शुरू होती है, वो आप उसको सही तौर पे प्रोवाइड करें नहीं करें। फिर इसके साथ आपका आपस में रवैया, वालदैन का आपस में रवैया, इज्जत देने का तरीका, इज्जत लेने का तरीका, और आपस में एक दूसरे के साथ सिला रहमी से बिहेव करने का तरीका वो क्या है। आपका बच्चा रिलेशनशिप भी आपसे सीखता है, आपका बच्चा जो है सोसाइटल रिलेशनशिप यानी कि जो समाजी या मुआशरती ताल्लुकात होते हैं वो भी आपसे सीखता है, उसके साथ जो स्पाउजल ताल्लुकात होते हैं वो भी आपसे सीखता है, उसके साथ उठने बैठने का तरीका, उसके साथ खाने पीने का तरीका, खाना खाते वक्त इस तरह बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह पे इख्तिताम करना चाहिए। फिर उसके साथ आपने हाथ धोना है या जाके वॉशरूम में जाके कुल्ली करनी है, अपने आप को साफ करना है, फिर उसके बाद आपने जहां खाया है उस टेबल को क्लीन करना है। ये सारा जो एक सिंपल स्ट्रक्चर, फाउंडेशनल कैरेक्टर होता है, वो आप अपने बच्चे को देते हैं। तो समर में जब आपके पास ज्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ होता है, जब वो स्कूल नहीं जा रहा, जहां आपको कुछ नहीं पता कि उसकी जो ज़हनी ग्रोथ है वो किस तरह हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है, तो समर में आपको वो टाइम, वो मौका जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये मौका होता है कि आप अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपने करीब रख के अपनी वैल्यूज जो है वो उसको दे सकें, आप ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे के उसको एक अच्छे तरीके से अच्छा नेक मुसलमान और एक कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन ऑफ द सोसाइटी बना सकें। तो छोटी छोटी चीजों से आप अपने बच्चे को सिखाते हैं किस तरह आप अपने अपने घर में भी अगर अपने शौहर से, अपने बीवी से डील कर रहे हैं, तो आपने उनके अच्छे काम पे उनसे थैंक यू कहना है, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो आपने इग्नोर करने, आपने घर में एक खूबसूरत फजा बरकरार रखनी ताकि आपके बच्चे को ऐसा लगे कि घर जो है वहां पे सबसे खूबसूरत माहौल है और मेरे लिए सबसे प्रोडक्टिव, सबसे सेफ, सबसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो मेरे घर है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है आई हेट माय हाउस, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम माय हाउस। ये चीजें ये क्यों होती हैं, जब अपने घर में आपके वालदैन आपको सही तरीके से माहौल प्रोवाइड नहीं करें। तो ये वालदैन की जिम्मेदारी है कि किस तरह वो अपने बच्चे को, बच्चे के लिए अपने घर को एक जन्नत का नमूना बनाएं, एक वैल्यू बेस्ड, रिस्पेक्ट बेस्ड, ठीक है, एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें कोई किसी से झूठ ना बोलता हो, कोई किसी के साथ किसी हकूक को मारता नहीं हो, ना वालदा वाले से जो है वो गलत तरीके से बात करती हो, ना वालिद जो है वो वालदा के साथ कोई हताकामी रवैया अख्तियार करते हैं, फिर उसके साथ उनके जो फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके घर में बच्चों के, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, उनको भी इज्जत से ट्रीट किया जाता है, आपके खुद के बच्चे को इज्जत से ट्रीट किया जाता है। और क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने इज्जत का हक सबको दिया, एक छोटे से बच्चे को भी अल्लाह ताला ने वो हक अदा किया, वो आपने नहीं दिया, वो मैंने नहीं दिया, वो वालदैन की हैसियत से आप नहीं सकते, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है आपका बच्चा, तो अल्लाह ताला ने उसको 100% अनकंडीशनल, नॉन निगोशिएबल इज्जत का हक दिया, ठीक है, उस पर तो कोई तीसरी बात हो ही नहीं सकती, दूसरी बात हो ही नहीं सकती, वो हक अल्लाह ताला ने उसे दिया है एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर। तो आपके बच्चे की भी देवन से रिस्पेक्ट है, आप उसको बिला वजह मार नहीं सकते, आप उसको बिला वजह गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, उसको नेम कॉलिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ममानत की है इस चीज की कि अपने बच्चे को बुरे नामों से याद ना किया करो, मना है। तो ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज जो आज हम कहते हैं कि हमें बाहर सोसाइटी दे रही है, नहीं, ये हमारा दीन हमें दे चुका आज से 1443 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं अगर मुस्लिम पेरेंट्स जो है वो फॉलो नहीं करते तो गलती हमारी है, ठीक है। तो वो वैल्यूज आपको घर से देनी है। तो समर में आपको वो मौका मिलता है, आप अपने बच्चे के साथ सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, वेकेशन रख के ये दिखाते हैं कि सफर में क्या एटिकेट्स होते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के साथ जब बाहर जा रहे हैं, बड़े रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, कहीं और वेकेशन पे जाते हैं, लंबे लंबे लाइनअप्स होते हैं, ठीक है, आप वॉशरूम की लाइनअप है, सब चीजें, तो आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह पेशेंसली वॉशरूम का वेट किया जाता है। अगर आपको वाकई कोई अर्जेंट जरूरत नहीं है तो आप किसी अपने से छोटे बच्चे को पहले जगह दे दें, कोई अगर प्रेग्नेंट खातून है उनको पहले जगह दे दें, अगर कोई बूढ़े हैं तो आप उनको पहले जगह दे दें, क्योंकि ये तीनों डेमोग्राफिक, बूढ़े, सीनियर और प्रेग्नेंट खवातीन, इनकी अर्जेंसी बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। तो आप वहां खड़े होके बातों बातों में अपने बच्चे को ही सिखाते हैं कि बेटा अगर आपने जल्दी नहीं जाना, क्या आप उनको पहले जगह दे दें, क्या आप उनको मौका दे दें। फिर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि अगर आप पब्लिक सेटिंग में पब्लिक या कम्युनिटी स्पेस यूज करें तो अपने यूज के बाद उसको साफ करना है आपने, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे वो पूल हो, जो जगह आपने यूज की है, इस्तेमाल की है, उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया। और आपने ये देखा है कि मेरे बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गन छोड़ दिया जो मेरे बाद आने वाले बंदे को तकलीफ का बाइस बने, क्योंकि आखिरी रसूल जो हमारे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये भी फरमान है मुसलमान के लिए, क्या कैरेक्टर बताया मुसलमान का, कि मुसलमान अपने हाथ और अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देता। और कैसे हो गया हाथ और जबान से तकलीफ, आप कहीं कूड़ा नहीं फेंक, लिटर नहीं क्रिएट करते, आप कोई जगह गंदी छोड़ कर उसको साफ किए बगैर नहीं उठते, ठीक है, उसके साथ ही साथ आप किसी को पीटते नहीं हैं, आपको किसी को अगर आपने ट्रैफिक में किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया तो आपने उसको फिंगर नहीं दिखानी, ये भी उसी एटिकेट में आ जाता है। तो आप अपने हाथ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मुसलमानों के एटिकेट्स में आता है, अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे, नुकसान आपका ही नहीं आपके बच्चे का भी है, क्योंकि बच्चा आपको वॉच कर रहा है और उसने वही करना है, वही कैरेक्टर लेके परवान चढ़ना है जो आप उसे दिखा रहे हैं। अगर उसको दिखता है कि मामी या डैडी जब गाड़ी बाहर चला रहे हैं, जरा सा किसी ने अगर उनसे आगे निकल गया या रास्ता काट दिया या उनकी स्पीड जो है वो फॉलो नहीं की या कोई भी चीज, तो उन्होंने उनको फिंगर दिखा दी दूसरे ड्राइवर को, ये ट्रैफिक कर्टेसी नहीं दिखाई, तो बच्चा आपको देख रहा है कि हाउ डू यू एक्चुअली कीप योर कूल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। व्हेन यू आर बिहाइंड द व्हील, जब आप व्हील के पीछे बैठे हैं गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने आप को पेशेंस का नमूना बनाना है। लंबे लंबे वो बैकलॉग्स हो जाते हैं, ट्रैफिक होता है, रश होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही होती हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, आपने अपना पेशेंस रखना है, क्योंकि गुस्सा तो वैसे भी हराम है हमारे दीन के लिहाज से, ठीक है ना। गुस्सा और झूठ दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिए हैं। क्यों? इसलिए कि गुस्सा आपके समझने और सोचने की सलाहियत भुला देता है, आपको ये भी भुला देता है कौन सा यूज ऑफ वर्ड आप कर रहे हैं, कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजेब अल्फाज पे आप उतर आते हैं, नाजेब जेस्टर्स पे आप उतर आते हैं, तो आपने गुस्सा नहीं दिखाना। तो ये जब आप ट्रैफिक में अपना कूल रखते हैं और हंस के हर खंदा पेशानी के साथ गलत चीज को भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो ठीक है, तो आप अपने बच्चे को दर्द दे रहे हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली कंट्रोल योर एंगर, कीप योर कूल, कीप योर पेशेंस इन द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो ये छुट्टियों में इधर उधर जाते वक्त आप जब हर एक जल्दी में हर एक को प्रॉब्लम है, किसी के पास ट्रैफिक कर्टसी बहुत कम हो जाती है, तो आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि नो, कोई और कुछ भी कर रहा है, मैंने अपनी वैल्यूज फॉलो करनी है और बेटा ये वैल्यूज हैं और यही आपने फॉलो करनी है, ठीक है। फिर आप कहीं जाते हैं, अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, किसी खूबसूरत जगह पे जाते हैं, कंट्री साइड पे जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जैसे आप लेक पे गए, कुछ गए, तो वहां पे भी आपने बच्चे को ये तालीम देनी है कि जो नेचर है ना वो अल्लाह ताला ने आपको अता की है एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, आपको देखने के लिए, ठीक है, डर्टी करने के लिए नहीं दी। आप जाके बीच पे जाएंगे तो आप वहां पे गंदगी और कलाजत नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी अल्लाह की मखलूक है जो तबाह हो सकती है। एनवायरमेंट को आपने केयर करनी है, बीच पे जाके आप गंद करके नहीं आएंगे, जो होगा कागज सब चीज आपने वहां फेंक के नहीं आनी, ठीक है। फिर आप अगर किसी पब्लिक सेटिंग में, ऐसी पार्क में कहीं जाते हैं, जहाँ पे और दूसरे लोग भी हैं, तो आपने वहां पे भी कूड़ा डालकर नहीं आना, आपने वहां पे कोई जो है ग्लास प्लास्टिक ये सब चीजें फेंक कर नहीं आनी, क्योंकि आपने उस खूबसूरत नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है उस मखलूक के लिए जो वहां की हैबिटेंट है। वो कौन है? वो चरिंद परिंद बग्स जो वहां पे रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनका वो घर बनाया ना, ठीक है। वैसे ही हम लोग दरख्त काट काट के हर जगह घर बना रहे हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो जो रह गई है उसको हमें प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ खुद भी आना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी ये तालीम देनी चाहिए कि उसका हमने ख्याल करना है। तो हम छुट्टियों में जब ऐसी जगहों पर जाते हैं, लेक्स पर, पार्क्स में, बीचेस पर, इस तरह की जगहों पर जब हम जाते हैं, तो बच्चों को हमने ये एटिकेट सिखाने हैं कि नेचर की रिस्पेक्ट क्या होती है, क्यों होती है और किस तरह आपने अडॉप्ट करनी है, ठीक है ना। वो कैसे होगा, अगेन आपने रोल मॉडल बनने, आपने उनको करके दिखाना है, ठीक है। और अगर कोई गलत चीज आपको नजर आती है तो आपने बच्चों को उस शख्स को जो वो गलत कर रहा है या कर रही है उसके बारे में बुरा कह के छोड़ नहीं देना, आपने बच्चों को रवैये का एहसास दिलाना है कि देखिए बेटा जो फला फर्द ने ये गलत चीज की है फेंक दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट मुस्लिम एक्सलेंस। क्योंकि मुसलमान अगेन जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने हाथ और अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देता, ठीक है। तो हमने ये दर्स अपने बच्चों को खुद देना है और उनको सिखाना है कि अब आपने कैसे आगे कंडक्ट करना है, किस तरह आपने नेचर की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है और इसके साथ स्पेस की भी रिस्पेक्ट करनी है कि किसी की स्पेस में आपने बाज नहीं करना, दूसरों को तकलीफ नहीं देना। फिर आगे बात जबान की, इसी हदीस के थ्रू कि जबान से कैसे तकलीफ से रोकते हैं, किसी को आपने गलत कलमा नहीं कहना, अगर आपके की लाइन तोड़ के कोई चला गया है तो आपने गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना, उसको बताना है कि सॉरी आई वॉज इन लाइन फर्स्ट, आपने मेरी लाइन तोड़ दी, अगर आपको कोई पर्सनल मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप कहो ओके यू कैन गो अहेड, आप चले जाएं, मैं आपको पहले मौका देता हूं, ठीक है। अगर आपको किसी नाज़े पर जुमला कहा है, गलत कहा है, तो आप अपना पर्सनल स्टैंडर्ड और मुस्लिम एक्सलेंस जो है वो बरकरार रखें, ठीक है, ठीक है। अगर कोई इस्लामोफोबिया आपको प्रेजेंट कर रहा है, कोई आपको रेशियल स्लर दे रहा है, कुछ और कर रहा है, फिर आपने उसको रिपोर्ट करना है। लेकिन रिपोर्ट करने का मतलब नहीं कि पहले आपने उसको दो चार गालियां दे दी, गलत जुमले बता दिए, फिर आपने रिपोर्ट कर दी, दो आपने सबसे पहले रिपोर्ट करना है और आपने लोगों को ये दिखाना है कि गलत मौके पे भी मुसलमान अपनी जबान को कैसे कंट्रोल रखता है। हाँ, अगर आपको कोई बॉडीली इंजरी का अटैक मिलता है या अगर आपको कोई गलत तरीके से मारपीट शुरू कर देता है तो फिर आपने अपने आप को डिफेंड करना है, मारना नहीं, आपने आपका डिफेंड करना है और उसके बाद पुलिस को कॉल कर देता है। तो ये जो सारा एटीट्यूड है आपने बच्चे को सिखाना है, आपने उसको सेफ्टी और डिफेंस के बारे में बताते वक्त सेफ्टी डिफेंस और उसके साथ अटैक का डिफरेंस बताना है। तो ये भी आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं अपने घर से, अपने सेफ जोन से, अपने प्रोटेक्ट से जब बाहर जाते हैं तो किस तरह अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चे को दर्ज देते हैं जब हम उनके साथ वेकेशन पे जाते हैं, जब हम उनके साथ बाहर निकलते हैं, जब उनके साथ कहीं खाना खाते हैं। खाना खाना एक मैं देखती हूँ कि अगर हम कहीं खाना खा रहे होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज बहुत ज्यादा खाना ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद गार्बेज कर देते हैं। ये भी एक गलत तरीका है क्योंकि आपका बच्चा जो है फूड वेस्ट करना सीख जाता है। आपको पता है एक रोटी का जो टुकड़ा होता है, एक रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा जो होता है, उसको लेने के लिए कितने बच्चे सोमालिया में, इथियोपिया में, मुख्तलिफ जगहों पर आपके बच्चों से जंग कर सकते हैं, कूड़े से खा सकते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो रोटी उनको नसीब नहीं हो रही, उनको नहीं मिल रही। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हमें तीन वक्त खाना मिल रहा है और इतना भी हमें मिल रहा है कि हम फेंक देते हैं। तो ये कोई अच्छी और तारीफ की बात नहीं है कि आप फूड को वेस्ट करें। आप अपने बच्चे को ये दर्श दें, सिखाएं उसे कि बेटा इतना ही आपने लेना है जितना आप खा सकते हैं। आपको और खाना है, आप यू गो फॉर सेकेंड, ठीक है, लेकिन डोंट ओवर फिल योर प्लेट एंड देन योर स्टमक। तो ये भी आप दर्श अपने बच्चे को देते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ क्लोज कनेक्शन बनाते हैं और उनको सिखाते हैं कि हविज जो है या खाने का जो एक्स्ट्रा हौका होता है या बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस जो होती है वो एक गलत तरीका है, आप उतना ही लीजिए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। और ये अक्सर मैं माओं को देखती हूँ खासतौर पर, और अगर उनको टोका जाए तो वो बुरा भी मान जाती है कि आपके बच्चे ने आपसे कहा मुझे खाना डाल दीजिए, तो आप उसकी प्लेट इतनी फुल कर देती हैं जितनी आपकी अपनी प्लेट होती है। वाई, क्यों? और फिर आप अपने बच्चे को फोर्सफुली फिनिश कराना चाहती हैं, तो फिर बच्चे की गलती नहीं है, आपकी बच्ची आपकी खुद की गलती है, क्योंकि फिर वो हिर्स जो है और वो हविज जो है खाने की वो आपके अंदर है, आपके बच्चे के अंदर नहीं है। आपके बच्चे का एक खास मिकदार है स्टमक की, वो आपकी उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आपको पहचान नहीं है तो एटलीस्ट आस्क योर चाइल्ड, ताकि आपका बच्चा भी एम्बेरस नहीं हो और आप भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो। तो ये भी आपने सिखाना है कि आपने फूड वेस्ट नहीं करना, आपने फूड को यूज करना है, अब्यूज नहीं करना, ठीक है ना। इसी तरह एनर्जी की बात आ जाती है कि लाइट्स हैं जो है, यूटिलिटीज हैं, जब आप यूज करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, अगर आप एयरबीएनबी ले रहे हैं, किसी और के घर जाके स्टे कर रहे हैं, तो आपने यूटिलिटीज को, रिसोर्सेज को यूज करना है, अब्यूज नहीं करना। जरूरत नहीं है लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, जरूरत नहीं है एयर कंडीशनर को ऑफ कर दीजिए, जरूरत नहीं है फैंस को ऑफ कर दीजिए। तो आपने बच्चे को ये सिखाना है कि एवरीथिंग अराउंड यू इज फॉर योर यूज, नॉट फॉर योर अब्यूज, ठीक है। तो आपने मिसयूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपने ये सिखाना है बच्चे को कि रिसोर्सेज को भी आपने अमानत के तौर पर यूज करना है, क्योंकि जिस रिसोर्स को आप यूज करें वो एक बहुत बड़े पूल से आ रही है ना, ठीक है ना। अगर आपने उसको मिसयूज किया तो हो सकता है कुछ दूसरे हकदारों को हक मारा जाए, और अगेन मुसलमान अपने जबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देता, ठीक है ना। तो अपने बच्चे को ये सिखाना है कि इसका मतलब आखिर है क्या, क्या है मुसलमान, और क्यों अपनी जो है वो पर्सनल और जो है ह्यूमन एक्सलेंस जो उसको बरकरार रखता है अपने हर कंडक्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपने बच्चे को सिखाना है, और ये दो महीने का जो टाइम है आपके पास वो अपने बच्चे को ज्यादा करीब रख के, ज्यादा टाइम अपने साथ लगा के, वो आपको मौका देता है कि आप अपने बच्चे को ये सारी चीजें सिखा सकें, और इन सारी चीजों को बावर कराते वक्त आपने खुद रोल मॉडल बन के उनको दिखाना है, आपने खुद उनको अपने तरीके से सिखाना है कि किस तरह ये चीज इस तरह अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की जाती है। और वो चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी बात होती है। आपने जाके किसी के लिए डोर खोला, या किसी ने आपके लिए डोर खोला, थैंक यू कैसे कहना है, आपने डोर खोल के उसके बाद आपने उसको कैसे बताना है कि ये सही तरीका इस तरह है और आपने ऐसे डोर खोलना है। या अगर कोई किसी ने आपसे नहीं भी कहा कि आपके लिए डोर खोलें, तो जो बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, या अगर कोई खातून स्ट्रॉलर लेके आ रही है, आपने उनके लिए डोर खोल के खड़े रहना है, उनको स्माइल पास करनी है, उनको बताना है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि स्माइल यानी कि मुस्कुराहट भी एक सदका है, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ चैरिटी। स्माइल, कितनी छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बातें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा के गए, तो हमने अपने बच्चों को ये चीजें ट्रांसफर करनी है, आपने उनको बताना है। फिर आपने बच्चों को, एक चीज जो मैं देखती हूँ कि बच्चे घास तोड़ रहे होते हैं, बिना वजह फूल तोड़ रहे होते हैं, तो आपने बच्चों को बताना है कि फूल और ग्रास तोड़ने के लिए एक साइन लगावाना जरूरी नहीं, आपने उनको बिना वजह नहीं तोड़ना, क्योंकि ये भी तकलीफ देने वाली बात है, ठीक है। देखिए, उनको इंजॉय कीजिए, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। अगेन, रिसोर्सेज आर देयर फॉर यू टू यूज, नॉट टू यूज, मिस यूज और अब्यूज, ठीक है। तो आपने ये मैसेज अपने बच्चे को बहुत क्लैरिटी के साथ देना है, और उसके साथ ही साथ आपने ये बताना है कि एक फंक्शनल जो वेकेशन होती है, एक बहुत ही प्रोडक्टिव वेकेशन वो होती है, जिसमें आप कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ शेयर करते हैं, और कुछ जो है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोकस होना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ ये जो आपका टाइम गुजरता है, ये टाइम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही प्रोडक्टिव हो, और इसके साथ ही साथ उसमें जो आपकी दीनी वैल्यूज हैं, आपके जो दीनी अकायद हैं, इस्लामिक अकायद जो हैं, आपकी इस्लामिक वैल्यूज जो हैं, उसका पूरा जो है वो फोकस खेल खेल में अपने बच्चों को बताना है। छोटी छोटी आपने हदीसें सुना देनी है, आप अगर वेकेशन पे जा रहे हैं, आपने कोई नबियों की स्टोरीज उन्हें सुना देनी है। उसके साथ ही साथ अगर आप जा रहे हैं, तो आपने कोई क्विज करना है, ट्रिविया जो होता है वो कर सकते हैं, कि बताइए कि अल्लाह ताला के जो है वो कितनी किताबें हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चा आराम से याद भी कर सके। या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, चार बेटियां थी, ठीक है, चार किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल की। फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो कितने अरकान जो हैं, वो जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें पूरे करने हैं एक मुसलमान की, ऐसे से, मतलब छोटी छोटी चीजों से बच्चों की उम्र के लिहाज से आपने ये ट्रिविया और ये चीजें अपनी गाड़ी में जब आप चल रहे हैं बच्चे के साथ, वजह इसके कि म्यूजिक लगा के छोड़ दें, बच्चों के साथ इस तरह करते हैं। एक बार मजे का गेम होता है, मुझे याद है अपने बच्चों के साथ जब भी हम कभी वेकेशन पे गए छोटी उम्रों में, तो हम कहते थे आई स्पाई विद माई लिटल आई, ठीक है, तो वो आई स्पाई करके हम अपने बच्चे को नेचर से रोशनास कराते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं नेचर से। आप कोई ट्री देख लें, आप कोई रोड साइन देख लें, कोई माइल साइन देख लें, कुछ देख लें, आप उसको बताते हैं। फिर उसके बाद अगर आप नेचर ट्रेल पे जा रहे हैं, किसी वॉक पे जा रहे हैं, तो आप उनको देखते हैं छोटे छोटे, अगर कोई लेडी बग दिख रही है, कोई और जो है कैटरपिलर दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, अगर आपको अपने बच्चे को कहते हैं कि वो ढूंढिए, और उस पर फिर आप बात करते हैं। आपके पास जितनी मालूमात है, या आप इंटरनेट से निकाल लीजिए, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, आपके पास डाटा है, सब चीजें, आप अपने बच्चों को बताएं कि इसकी हिस्ट्री है, उसकी लाइफ स्पैन ये है, की लाइफ साइकिल ये होती है, इस तरह अल्लाह ताला उसको पैदा करता है। और उसको बताइए अपने बच्चे को कि सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कितनी छोटी सी मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें कितनी खूबसूरती रखी है और किस तरह उसको वो परवान चढ़ाता है। उस हर कीड़े मकोड़े की, हर बग की, हर प्लांट की, हर चीज की अफादियत आप अपने बच्चे को बताइए, ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, अल्लाह ताला ने कोई चीज तबाह करने के लिए नहीं पैदा की, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक पर्पज रखा है। सिर्फ बात क्या है कि हम क्योंकि इंसान हैं, हम कम इल्म हैं, हमारे पास नॉलेज कम है, तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हम इस बात से और बात करेंगे और एक और मैसेज हम सुन लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? तो हम अपने अगले मैसेज को सुनते हैं और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।
Just imagine your kids do an experiment at the age of 12, 13, 14, 15, and 16 that they would do at when they get to the university level and the scientific level. You position them to be able to take on the world and be the best in their scientific fields.
In the robotics course, your children would be learning to build and create robots, automation tools and toys, computer vision and artificial intelligence.
Every child wants to be a superhero, but how many would ever consider mathematics as a superpower? Here at Young Heroes, we teach mathematics like a superpower, a skill needed for the future world today. With math, kids can be young heroes.
With leading programs in Python, data analytics, Young Heroes serves as a platform to launch your children's career in data analytics, engineering, and software.
The future of your kids is just one click away. So click the button below and turn your kids into leaders of tomorrow.
Assalamu alaikum. Welcome back. आप सुन रहे हैं हम टॉक को फरीना सदीकी के साथ रेडियो ई आवाज पे। आप हमें फोन कर सकते हैं 416-620-1778 पर 416-620-1778। उसके अलावा हमारा प्रोग्राम लाइव eawaz.com पे सुन सकते हैं, ई आवाज के फेसबुक पेज पे सुन सकते हैं, और आप अगर आपके पास स्मार्टफोन पे ऐप है ई आवाज का, वहां पे आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का विजुअल देखना चाहें तो आप मेरी यूट्यूब पे जाके, फरीना सिद्दीकी पे जाके इस प्रोग्राम का विजुअल जो है वो देख सकते हैं, और हम इसको ई आवाज पे भी पोस्ट कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं समर प्रोग्राम्स की, हम बात कर रहे हैं समर कैंप्स की, और ये समर कैंप्स या समर प्रोग्राम्स जो है हम अपने बच्चों के लिए मुहैया करते हैं। हम एक कॉल ले लेते हैं, हमारे पास एक कॉल है, तो फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। जी
जी, अस्सलाम वालेकुम जी मेरी बहन।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कौन बात करें?
देखो आपका हौसला अफजाई के लिए, आपकी मेहनत के लिए आपको बताना था कि बहुत ही अच्छा आप प्रोग्राम कर रही हैं हमारे बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर। बहुत मुझे खुशी हुई कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। कोई कमेंट करना चाहेंगे ब्रदर आप? हमारी कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है. बहुत शुक्रिया ब्रदर ने कहा कि हमारा प्रोग्राम उनको पसंद आ रहा है हमारे बच्चों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके आरा आपकी ओपिनियन आप हमें भेजते रहेंगे. आप हमें कॉल कीजिए 416-620 पे 1778 पे. आपकी राय, आपकी जो है जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कोई भी चीज़ है, तो मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा. जरूर आप हमें कॉल कीजिए, और इवन प्रोग्राम के बाद भी आप ई आवाज़ के फेसबुक पे जाके या eawaz.com पे जाके आप हमें अपने कमेंट जो है वो भेज सकते हैं. या अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप हम टॉक में सुनना चाहते हैं, आप हम टॉक को अपनी जो है राय भेज सकते हैं, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं प्रोग्राम कर सकूं. हम बात करें अपने बच्चों की, तो इंग्लिश का एक मकूला है, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. ठीक है, तो ये जो एक विलेज की जिम्मेदारी होती है, ये जो एक विलेज का एक पर्पज होता है, वो पर्पज ये होता है कि पूरी कौम जो है, पूरी सोसाइटी जो है, वो मिलके उस बच्चे के किरदार को तश्कील देती है. पहली जिम्मेदारी बेशक वालदैन की है, लेकिन उसके साथ सोसाइटी की भी जिम्मेदारी होती है. और वो सोसाइटी खूबसूरत तरीके से मुकम्मल इस्लामिक वैल्यूज के साथ कब तश्कील पाती है, जब उस सोसाइटी के तमाम लोग, वालदैन, उस्ताद और दूसरे लोग, मेंटोर्स और टीचर्स जो भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं. खानदान वाले सब लोग गलत तरीके से बच्चे को इंस्पायर करने के बजाय उसको अच्छी इंस्पिरेशन देते हैं. चचा, फुप्पी, मामू, खाला, जो भी आपके अतराफ रिश्तेदार हैं, वो वालदैन का साथ देते हैं कि जो वालदैन जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चे को तालीम देने के लिए या अपने बच्चे को एक सही और अच्छा नेक दीनदार इंसान बनाने के लिए, तो वो उसकी एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो अगर आपकी जिंदगी में कोई नीसेस, नेफ्यूज, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो आपने जरूर ये ख्याल रखना है कि आप उनके वालदैन की दीवी वैल्यूज की खिलाफ वर्जी करने के बजाय, उनको कोई गलत तरीका सिखाने के बजाय, उनकी एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करें. और वो आप कैसे कर सकते हैं कि अगर गर्मियों की छुट्टियों में या समर वेकेशंस में बच्चा आपके पास आता है अपने वालदैन के साथ या अपने वालदैन के बगैर, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने उसके वालदैन के रूल्स को बुरा नहीं कहना, आपने उसके वालदैन के रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, या आपने अपने उसके वालदैन को ये इज्जत देनी है कि जो चीज उसके बच्चे ने को उसने अडॉप्ट करवानी है वो अडॉप्ट करवानी है, और आपने उस अडॉप्टेशन के खिलाफ या उसके वालदैन के बताए हुए जो है वो वैल्यू सेट के खिलाफ नहीं जाना. मैं देखती हूँ अक्सर बहुत ज्यादा घरों में ये चीज जो है तजाद का शिकार बनती है कि वालदैन ने कहा ये चीज नहीं करनी है, दूसरे रिश्तेदार कहते हैं अरे हटो, आपने ये क्या रूल बना रखा है, ये तो ज्यादती है. तो आप ये देखिए कि आप उस बच्चे के वालदैन से ज्यादा उसके हमदर्द और मुखलिस कैसे हो सकते हैं. वो जो दो इंसान, उसके वालदा और उसकी उसके वालिद जो हैं, वो अपना तन, मन, धन, अपने स्किल्स, अपनी जवानी, अपना पूरा वक्त, अपना पूरा सरमाया लगा के इस बच्चे को तालीम और तरबियत दोनों देने की कोशिश करें, उसके बच्चे अपने बच्चे की परवरिश करें, लेकिन आप वो नहीं कर रहे. आपके लिए तो वो एक जुमला, बस एक जुमला हो गया ना, लेकिन आप अपने उस बच्चे के दिमाग में भी डाउट क्रिएट कर देते हैं, वालदैन को भी मायूसी का शिकार कर देते हैं, और एक बहुत अजीब सी फजा और माहौल जो है और अपने उनकी फैमिली के दरमियान पैदा कर देते हैं कि जो वो है वो गलत चीज है. ठीक है ना, तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर किसी का भी बच्चा आपके पास है या आपके साथ वेकेशन पे आ रहा है या कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है, तो आपने उसको गलत तालीम नहीं देनी. आपने कोई भी चीज अगर उसको पेश भी करनी है, कोई आपने एक जो आइडिया पेश करना है, कोई ख्याल उसको सिखाना है या आप उसको कोई चीज शेयर करना चाह रहे हैं, तो अगर वो एक बच्चा, छोटा बच्चा है, तो जरूर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसके वालदैन से इजाजत ले लीजिए. क्या ये चीज आप अपने बच्चे के लिए बेहतर समझते हैं या नहीं, क्या वो चीज मैं आपके बच्चे को करवा दूं या नहीं, क्या ये चीज आप समझते हैं कि आपके बच्चे तक के कानों तक या उसके दिमाग तक पहुंचा देनी चाहिए या नहीं. तो अपने रिश्तेदारों को और उन बच्चों के वालदैन को ये इज्जत जरूर दीजिए, ये एहतराम जरूर दीजिए कि आप अपने उसके बच्चे के दिमाग में क्या डालना चाहते हैं. अभी देखिए, पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज्यादा सालों से वालदैन ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो आपके अपने बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं, क्या वैल्यू सेट दे रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी दे रहे हैं. फर्ज कीजिए आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, कोई भी आपका मजहब है, लेकिन आपका जो बच्चा स्कूल जा रहा है वहां पे उसको कोई मजहब की तालीम तो दी ही नहीं जा रही. उसको तो बस ये सिखाया जा रहा है कि एक मतलब मी माई सेल्फ एंड आई की सोसाइटी है, फिर उसके साथ जो है मजहब को बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दो क्योंकि शायद तुम्हें खुदा की भी जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में. तो ये जो माइंड सेट है, इस को इसके साथ आपका बच्चा उस पब्लिक सेटिंग में परवान चढ़ाए और इस माइंडसेट को खत्म करने के लिए वालदैन घर पे सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनके पास वक्त कम है, उनके पास एनर्जी कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है। अगर आपने बच्चे को इस्लामिक स्कूल भेजना चाहते हैं तो उनके पास पैसे कम है, ठीक है। अगर आपने बच्चे को होम स्कूल करना चाह रहे हैं तो उनको जॉब का मसला है। तो जो स्कूल में जो कुछ उसको सिखाया जा रहा है तो उसके हिसाब से आपके पास बच्चे की किरदार की, आपके बच्चे के इमोशंस की और उसके माइंड सेट की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो आपने ये देखना है कि एक रिश्तेदार की हैसियत से आप अपने अपने बच्चों के जो आपके जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चों को आप खराबी का जिम्मा तो नहीं बन रहे, आपने उनको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फिर अगर वालदैन की मैं बात करूं तो वालदैन जो परेशान है पब्लिक स्कूल में जो सिखाया जा रहा है बिल्कुल एक सेक्युलर माइंड सेट दे के बच्चे को जो परवरिश किया जा रहा है, तो उसको आपने क्या करना है, घर पे कैसे कर सकते हैं। घर पे आप अपनी वैल्यू सेट अपने बच्चे को दें। और याद रखिए, अगर आपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, बहुत ही खूबसूरत चीज, आपने उसको हाफिज बना दिया, और भी बेपनाह खूबसूरत चीज है, अल्लाह ताला आपके लिए नेकियां लिख देता है। लेकिन क्या आपने बच्चे के साथ बैठ के वन ऑन वन आपने उसको दीन की तालीम दी है? क्या जो कुरान आपने उसे पढ़ाया उसको समझाने की, ताकि आपका बच्चा वॉकिंग टॉकिंग कुरान बने, सिर्फ तोते की तरह कुरान रटने वाला एक जोम्बी ना बने। अगर आप पहले जबान नहीं है, आप अरबी नहीं समझते, तो आपके बच्चे को समझ भी नहीं आता कि उसने मेमोराइज क्या किया है। बेशक उसका सीना नूर से भर चुका है क्योंकि उसने कुरान को मेमोराइज कर लिया है कवर टू कवर। कुरान का ये मौजा है कि ये पूरी दुनिया में आज तक 1400 साल से लेके आज तक ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसे कोई भी शख्स अगर कोशिश करे तो कवर टू कवर जो है वो मेमोराइज कर सकता है, कवर टू कवर वर्ड बाय वर्ड उसको मेमोराइज कर सकता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कोई और किताब नहीं है जिसके पास ये मौजा हो सिवाय कुरान करीम के, इसको कवर टू कवर जो है वो मेमोराइज किया जा सकता है। लेकिन उस मेमोराइजेशन के बाद क्या आपका बच्चा उसको अपनी जिंदगी में, अपने किरदार में, अपने एक सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर वो बनाने जा रहा है उसमें इंप्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है? ये है बहुत अहम चीज जो वालदैन को याद रखनी है। तो वो सिर्फ आप दे सकते हैं, और वो कैसे दे सकते हैं, या तो उसको अच्छे प्रोग्राम्स में कोर्सेज में डालिए, उसके साथ वन ऑन वन टाइम दीजिए। अभी मेरे नजर से एक स्टडी गुजरी जो एक लोकल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी की कि बच्चे जो हैं अपने वालदैन के साथ वन ऑन वन टाइम कितना गुजारते हैं। तो वो आज से 10 साल पहले वो टाइम था 13 मिनट्स और आज वो टाइम रह गया है 7 मिनट्स। तो आप ये सोचिए कितनी बड़े अलमिए की बात है कि हम अपने बच्चों के साथ वन ऑन वन टाइम गुजारते हैं जिसमें हम उनके लिए इंस्पिरेशन बन सके और वो हमारे अपने आप को हमें अपने लिए रोल मॉडल के तौर पे देख सके। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको आप दूर कर सकते हैं। तो याद रखिए कि एक चीज होती है टॉकिंग एट देम, एक चीज होती है टॉकिंग टू देम। तो आप अपने बच्चों से टॉक एट कर रहे हैं, आप बच्चों को सिर्फ अपना हुक्म सादिर करें, होमवर्क करो, नमाज पढ़ो, पढ़ी ना पढ़ी आपको पढ़वानी है, आपने हुक्म सादिर कर दिया। नमाज में उसने सिर्फ टक्करें मारी है या एक्चुअली अल्लाह ताला से दिल मिलाया है, ठीक है? नमाज में खाली उसने सजदा और वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की तरह किया या वाकई अल्लाह ताला से बॉन्डिंग की एक्सरसाइज की है, ये आपको समझना जरूरी है। आपने उससे कहा होमवर्क करो, नहा कराओ, शावर लिया, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, बेड टाइम, तो आपका जो वन ऑन वन कनेक्शन है टॉकिंग टू देम तो हो ही नहीं रहा ना। खाना फिनिश करो, दांत ब्रश करो, ये सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हैं, वन साइडेड कन्वर्सेशन है, ठीक है? नो कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे होती है, वन साइडेड नहीं होती। तो आपने अपने बच्चे के साथ वो कनेक्शन बिल्डिंग करनी है जितना हो सके रोजाना के तौर पर कीजिए, ताकि जो आप जब बच्चा आपका प्ले ग्राउंड में जाता है और वापस आता है आप उसको नहलाते हैं, शावर देते हैं, उसके अगर जूते गंदे हैं वो धोते हैं, सब करते हैं। जब आप स्कूल में भी बच्चा जा रहा है सेक्युलर वैल्यूज लेकर आ रहा है जो आपके वैल्यूज से, आपकी दीनी वैल्यूज से मुतसादिम है या उनसे अलाइन नहीं करती, तो आपने उसके दिमाग की सफाई करनी है ना। दिमाग की सफाई 2 मिनट में तो नहीं हो सकती, आपने उसको कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना टाइम गुजारना है। वो स्कूल में ब्रेव नाइट्स की स्टोरी सुन रहा है, ठीक है, दूसरे लोगों की बातें सुन रहा है, जब वो घर आएगा और रात को बेड टाइम होगा तो आपने उसको नबियों की स्टोरी सुनानी, उसको खालिद बिन वलीद की किस्से सुनाने, सलाहुद्दीन अयूबी के किस्से सुनाने, वरना आपका बच्चा जो है वो मुसलमान प्राउड मुस्लिम के तौर पे तश्कील पा ही नहीं सकेगा क्योंकि माइंडसेट ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपने ये कंसिस्टेंटली रोजाना के हिसाब से करना है। फिर उसके साथ ही साथ आपने अपने खुद के कैरेक्टर को एक एक्सट्रीम एक्सेलेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो देख के दिखानी है अपने बच्चे को। मैं झूठ नहीं बोलती, میں غلط کام نہیں کرتی, میں کسی کی غیبت نہیں کرتی, میں ساس نندوں سے لڑائی نہیں کرتی, میں ہر رشتے کو اہمیت دیتی ہوں, ہر رشتے کی عزت کرتی ہوں, میں ہر رشتے کو اس کو اللہ کی طرف سے جو دیا ہوا حق ہے وہ پورا کرتی ہوں. تو اگر ایک ماں کی حیثیت سے آپ یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ, یہ کیریکٹر پریزنٹیشن اپنے بچے کو دکھاتے ہیں, تب آپ کے بچے کا آپ کے اوپر بھی ٹرسٹ اور کانفیڈینس بحال ہوتا ہے اور اپنے اوپر بھی ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس بحال ہوتا ہے. اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ایک بہترین رول ماڈل بنا کے پیش نہیں کریں, کیونکہ اس کے لیے تو رول ماڈل اس کی ٹیچر ہے. پیار کر رہی ہیں, ڈانٹ کچھ نہیں رہی, دیر از نو ہیپننگ ان دا اسکول, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کچھ بات غلط نہیں کیا جا رہا, جج نہیں کیا جا رہا. ایک بہت بڑا ورڈ ہے کہ ججمنٹل, گھر میں صرف ججمنٹ ملتی ہے, باہر نہیں ملتی, کیونکہ اس ٹیچر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بچہ کیا ویلیو سیٹ فالو کر رہا ہے. اس کے نزدیک تو اس نے بچے کا دوست بننا ہے. اگر آپ کو اسے یہ لگتا بھی ہے نا کہ آپ نے کچھ غلط کیا, ٹیچر کا کام ہے سی اے ایس کو کال کر دینا, بچہ نگلیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, انٹینٹ فل نگلیکٹ, غلط کام ہو رہا ہے, بچے کو رائٹس جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا رہے, تو ٹیچر تو اس کی فیورٹ ہوگی نا. اور ماں جو ہے وہ گھر آ کے ہر چیز کو کہہ رہی ہے, تم یہ بھی نہیں کر سکتے, تم وہ بھی نہیں کر سکتے. توجہ دیے بغیر, ریزننگ دیے بغیر آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ صرف وہ ایک زومبی کی طرح آپ کو فالو کرے. نہیں, ایسا مت کیجیے, کیونکہ اسی سب رویے کی وجہ سے, اسی تمام غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو اگر فزیکلی نہیں کھو رہے تو ہم مینٹلی ان کو کھو رہے ہیں. ہمارے بچے ہمارے دین سے, ہماری ویلیوز سے, ہمارے گھروں سے دور جا رہے ہیں. فزیکلی تو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں, لیکن میلوں اور کوسوں کا فاصلہ ہے آپ کے اور ان کے درمیان, میلوں اور کوسوں کا فاصلہ ہے آپ کے اور ان کے جذباتی کنیکشنز میں, ٹھیک ہے نا. کوئی فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی, کیونکہ اسکول میں تو ان کو ہر چیز جائز ہے, سب چیز جائز ہے, جو تم کہو وہ ٹھیک ہے, فریڈم ٹھیک ہے, لبرٹی ٹھیک ہے, سب چیز مل رہی. تو آپ کا بچہ آپ کو کیوں پسند کرے گا؟ آپ کا بچہ آپ کو اس وقت پسند کرے گا جب آپ ایک بہترین رول ماڈل ہوں گے, یعنی آپ یو ول واک دا ٹاک فار دم. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں یا نہیں, تو آپ کا بچہ آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ آپ تو منافق ہیں, آپ تو ٹو فیس پرسن ہیں, آپ تو دوغل ہیں, آپ کو ہپوکریٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے نا ان کو کہ آپ نہیں ہیں ایسے, آپ غلط نہیں ہیں, آپ بلا وجہ کسی کی غیبت نہیں کرتے, آپ غلط قسم کی چیز جب چاہتے ہیں کہ بچہ میوزک نہ سنے, غلط قسم کے ڈرامے نہیں دیکھے, موویز نہیں دیکھے, اس کو دکھائیے یہ کر کے کہ اچھا کریکٹر کیا ہوتا ہے, پروڈکٹیو یوز آف ٹائم کیا ہوتا ہے, پروڈکٹیو یوز آف نالج کیا ہوتا ہے, پروڈکٹیو پریزنٹیشن آف نالج کیا ہوتی ہے. تو یہ رول ماڈلنگ جو ہے آپ نے اپنے بچے کو خود کر کے دکھانی ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوا, جب تک آپ اپنا خود موازنہ نہیں کریں گے ایز اے پیرنٹ, اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں گے نہیں اور اپنی ریسپانسبلٹی کو آگے بڑھا کے اپنے بچے میں اندر انسرٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ کا بچہ صرف ایک سوسائٹی کی پروڈکٹ رہے گا جو اسکول کے سیکولر مائنڈ سیٹ اور ماحول سے نکل کے باہر آ رہا ہے, اور پھر وہ اسی طرح پروان چڑھے گا, اسی طرح دنیا میں جیے گا اور اسی طرح مر جائے گا, کیونکہ یہ سوسائٹی تو اس کو صرف می مائی سیلف اینڈ آئی کا ایک کانسیپٹ دے رہی ہے, اس کی سیلف سینٹرڈنیس کو آگے بڑھا رہی ہے. دیر از نو کمیونٹی کانسیپٹ, ٹھیک ہے, گیونگ بیک کی بات تو ہوتی ہے لیکن گیونگ بیک پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کا بچہ اسکول میں رہ کے یہ سیکھتا ہے کہ کمیونٹی کے لیے سرو کرنا ایک دینی فریضہ ہے, والنٹیئر ورک ایک دینی فریضہ ہے, فلاحی کام جو ہے ایک دینی فریضہ ہے؟ نہیں سیکھتا, اور وہ صرف آپ سکھا سکتے ہیں. اس سرچ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں, اگلے سنڈے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں eawaz.com پہ جا کے, فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں, یا پھر آپ sfarina@gmail.com پہ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ, تاکہ میں ہر سنڈے آپ کی خدمت میں ایک اچھا ٹاپک لے کے حاضر ہوں. اور آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. کال کر سکتے ہیں 416-620-1778 پر, سنڈے کو شام 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان ہم ٹاک بائی فرینہ صدیقی, ای آواز ریڈیو 770 AM پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یونگس ٹاؤن ٹورانٹو. The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
ٹرکنگ انڈسٹری میں کریئر بنانے کا شاندار موقع میز کنسلٹنسی آفر کرتے ہیں. ٹرک ڈسپیچر اینڈ فریٹ بروکر اسپیشلسٹ ٹریننگ کورسز. اس ٹریننگ کورس کے ذریعے آپ بن سکتے ہیں ٹرک ڈسپیچر, فریٹ بروکر, یا شروع کریں اپنی ٹرکنگ کمپنی. اگر آپ ٹرکنگ آنٹرپرنور بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کمپنی کو سیٹل کرنا, پرمٹس اور تمام دوسری چیزوں کا بندوبست کرنے میں مدد کرتے ہیں. آج ہی کانٹیکٹ کریں میز کنسلٹنسی 905-826-2919. 905-826-2919.
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया का मकबूल तरीन शो खबरहार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में June 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबरहार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-836-6974 416-836-6974।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401।